ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक नितिन गोखले और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
पिछले दिनों भारत की एक बड़ी उपलब्धि खबरों में रही कि 2023-24 में देश में रक्षा उत्पादन लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो उससे पहले के साल की तुलना में 16.8% अधिक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदमों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं रणनीतिक मामलों के जानकार नितिन गोखले जी। नितिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी।
रक्षा उत्पादन में भारत की उपलब्धियां उल्लेखनीय है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने उल्लेख किया है, और आप भारत की इस यात्रा के किन अहम पड़ावों को रेखांकित करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है।
जी, दो चीजें इसमें मैं रेखांकित करना चाहूंगा। एक तो कि ये पिछले 10 साल में भारत ने नई योजना बनाई थी मेक इन इंडिया के तहत, उसके फल अब नजर आ रहे हैं, और इसी के कारण जहां पहले भारत 70% तक अपनी रणनीतिक मामलों की जो जरूरत थी, युद्ध के लिए लगने वाले अस्त्र शस्त्र आयात करते थे, उसमें एक योजना ऐसी थी कि उसको कैसे घटाया जाए और किस तरह से भारत में ही उत्पादित रक्षा मामलों की जो सामग्री लगती है तीनों सेनाओं के लिए, उसको कैसे किया जाए, इसकी जो योजना थी उसका आज हमें एक बहुत बड़ा यश भारत को मिला है, जिससे कि रक्षा प्रोडक्शन जो है, डिफेंस प्रोडक्शन, उसकी संख्या या उसकी वैल्यू है, वृद्धि हुई है। उसमें जैसे आपने बताया 16.8% वृद्धि हुई है, और इसके कारण ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारतीय सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, रक्षा मंत्रालय की, कि जहां इतना निर्भर करते थे बाहर से आने वाले सामग्री पर, उससे इसमें कटौती हुई है और यहां भारत का एक नया अध्याय भारतीय रक्षा संपदा में शुरू हुआ है।
जी, आप इस उपलब्धि के लिए, जैसे अगर हम मान लें कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, अभी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं भी हों तो, लेकिन रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से सरकार ने कौन कौन सी अहम नीतियां अपनाई हैं?
तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, जब डिफेंस एक्विजिशन, पहले उसको डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कहा जाता था, डीपीपी, जो 2016 में इसका एक अध्ययन किया गया और ये कहा गया कि इसमें भारतीय कंपनियों को भारत में बने सामग्री को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 2016 के डीपीपी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसमें IDDM, इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे एक क्लॉज को यहाँ लाया गया उस योजना में, जिससे कि भारतीय कंपनियों को वहां पे प्रेफरेंस मिले। शुरुआत अगर किसी सामग्री की खरीद फोक करनी है अगर भारतीय सेनाओं को, तो पहले उन्हें भारतीय कंपनियों से बनाई गई सामग्री को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर पाते हैं तभी वो देश के बाहर जाके इसका चयन कर सकते हैं, ऐसे एक पॉलिसी लाई गई 2016 में। उससे ये हुआ कि आत्मनिर्भरता की तरफ जो पहले दो कदम बढ़े थे उसमें IDDM का इंट्रोडक्शन, इस पॉलिसी का, ये बहुत बड़ा एक कदम था, और उसके बाद जो सेनाओं ने अपनी जो खरीदारी करनी थी अपने कामों के लिए, अस्त्र शस्त्रों के लिए, गोला बारूद खरीदने के लिए, ये सब भारतीय कंपनियों से खरीदना शुरू किया। इससे हुआ कि उनको एक प्रोत्साहन भी मिला और उन्हें एक अच्छा बड़ा बिजनेस भी मिला। उस तरह से ये शुरुआत हुई थी। फिर मेक इन इंडिया के तहत ये भी कहा गया कि दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में, और प्रेफरेंस देने के कारण भारतीय कंपनियों ने भी अपने R&D में पैसा अपना लगाना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि उनकी क्वालिटी बढ़ गई और फिर धीरे धीरे भारतीय सेनाएं भारतीय कंपनियों की तरफ सीरियसली देखने लग गई और उनसे खरीदारी करने लग गई। ये दो चीजें मैं चाहूंगा ये बताना आपको, इसके कारण आज जो हम जिस पड़ाव पे पहुंचे हैं, ये दो कदमों के कारण बहुत बड़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है भारतीय कंपनियों के उत्पादन में और सेनाओं की तरफ से उनकी खरीदारी करने।
जैसा आपने अभी उल्लेख किया है कि भारत ने जिस तरह से इसमें कदम बढ़ाए हैं और सोचे समझे तरीके से काम किया है, इस पूरे, अगर हम परिदृश्य पर गौर करें तो इस पूरे मामले में, पूरे प्रतिरक्षा मामले में, रक्षा उत्पादन में तकनीक की भूमिका बहुत अहम है और आज जब पूरा जब हम कहते हैं ग्लोबल विलेज है और तकनीक का आयात करते हैं कई बार हम और अपने यहाँ उत्पादन करते हैं या कई बार हम तकनीक खुद भी विकसित करते हैं, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण जो है इसमें कौन कौन सी तकनीक ऐसी है जो हमारे यहाँ विकसित हुई है या कौन सी तकनीक हम बाहर से लाकर काम कर रहे हैं?
जी देखिए, रक्षा मामलों में तकनीक को विकसित करना एक बहुत कठिन काम होता है। सालों से दशकों से जो विकसित देश हैं वो इस ऊपर काम कर रहे हैं और इससे उनको बड़ा लाभ भी हुआ है, उनका बड़ा बिजनेस भी है इसके बारे में। तो भारत में इसकी शुरुआत बहुत देर से हुई और 2015-16 तक भारत पूरी तरह से आयात करता था, जिसे स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, कि जो भी बाहर बनता था सामान उसको भारत में आयात किया जाता था और यहाँ पे उसको एकत्रित किया जाता था या असेंबल किया जाता था। तो अगला कदम जो था ये था कि उन जो जो प्लेटफॉर्म्स थे, लड़ाकू जहाज कहिए या सबमरीन कहिए या शिप कहिए या उसके इंजन कहिए, ये बाहर से ला के या बाहर के कंपनियों के साथ उनका ज्वाइंट प्रोडक्शन सहमति से यहाँ पे करना, इसकी शुरुआत हुई, जो अगला कदम था सिर्फ प्योर इम्पोर्ट करने से। और फिर धीरे धीरे कुछ कंपनियां भारत में ऐसी बनी जिन्होंने अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी अपनी होती है, अपनी डिजाइन होती है, अपना डेवलपमेंट होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का डिजाइन करना और उसका उत्पादन करना शुरू किया। तो ये तीन कदमों में इसकी शुरुआत हुई और ये जो योजना थी भारत की वो धीरे धीरे विकसित होती गई। चौथा कदम इसमें यह था कि भारत की तरफ से निर्यात करना रक्षा सामग्री का, ये भी बहुत जोर से शुरू हुआ 2016-17 से। और जैसे आपको ज्ञात होगा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी पिछले 5 सालों में बढ़ा है और इसके कारण भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है, उसका जो लेखा जोखा है, उसमें 21,000 करोड़ से ज्यादा 2023-24 में ये एक्सपोर्ट्स हुआ है भारत की तरफ से रक्षा सामग्री का, जो 32% ज्यादा था पिछले साल से। पिछले साल में 15,920 करोड़ का निर्यात हुआ था भारत की तरफ से। इसके कारण भी भारत के रक्षा क्षेत्र में भारत की एक नई साख दिखाई दे रही है और एक भारत की नई पहचान दुनिया को हो रही है।
आपने उल्लेख किया कि भारत से जो रक्षा सामग्री का निर्यात हो रहा है, तो भारत से ऐसी चीजों का आयात करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में आयात किया है?
जी, मुख्यतः ये जो देश है ये सब अफ्रीका महाद्वीप में है और कुछ भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके यहाँ ये जाता है। और कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि जो अमरीका में कुछ उच्च तकनीक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जो कुछ जरूरत पड़ती है, या जैसे लड़ाकू जहाज है बोइंग के, या बोइंग का जो हेलीकॉप्टर है उसके कुछ भाग एम्पनाज कहते हैं उसका भी निर्यात भारत की तरफ से हुआ है। फिर भारत की तरफ से गोला बारूद का निर्यात हुआ है, कुछ आर्टिलरी गन्स का निर्यात हुआ है पिछले 2 सालों में, और जो ट्रेनिंग सिस्टम है सिम्युलेटर्स जैसे कुछ कंपनियां भारत में, उसको भी अब इतना प्रोत्साहन मिला है दुनिया से कि भारत की तरफ से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स अब बाहर जा रहे हैं, इसके कारण जाके इसकी संख्या, इसकी वैल्यू बढ़ गई है।
अगर हम देखें निर्यात में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कॉस्ट क्या है, उत्पादन की लागत क्या है, क्या भारत को अपने यहाँ उत्पादन की कम लागत का लाभ मिल रहा है रक्षा उत्पादों के मामले में?
जी बिल्कुल मिल रहा है। हमारे यहाँ जो मैन पावर कॉस्ट जिसको कहते हैं, जो हमारे काम करने वाले जो लोग होते हैं तकनीकी तरह से जिनके एक स्किल होती है, ऐसे लोगों के उनको जितना पैसे दिए जाते हैं या उनका जो मानधन होता है वो पश्चिमी देशों के तुलना में बहुत कम होता है, और उसके कारण मैन पावर कॉस्ट जो है ऐसे कंपनियों की बहुत कम होती है अमेरिका या यूरोप के देशों के तुलना में। इसी के कारण ओवरऑल जो कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट की वो भी कम हो जाती है, और यही एक एडवांटेज नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये है कि भारत में जो रॉ मटेरियल लगता है ऐसे उत्पादनों के लिए या ऐसे अस्त्र शस्त्रों के लिए, उसकी भी कीमत भारत में कम होती थी, और इसी के कारण आप देखेंगे कि इसकी कीमत जब हम बाहर बेचते हैं उस समय ये कीमत बिल्कुल कम हो जाती है इन बाहर के कीमतों की तुलना में।
अगर हम देखें नितिन जी, तो ये जैसे अब तक जो रक्षा उत्पाद हैं इसका बहुत बड़ा भाग पीएसयूज में उत्पादित हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बाजार का विस्तार होगा और उत्पादन क्षेत्र का विस्तार होगा तो निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। आपकी समझ से निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है भारत में रक्षा उत्पादन में?
बहुत बड़ी भूमिका मैं कहूंगा उनकी है, क्योंकि देखिए पीएसयू का एक अपना लिमिटेशन होता है। एक तो वो सरकारी कंट्रोल में होती है, उनके यहाँ जो भी बजट लगता है वो सरकार की तरफ से आता है। उनका एक एडवांटेज अभी तक था जो कुछ सालों तक रहेगा, उसमें ये है कि उनको पैसा जो है बाजार से लेना नहीं पड़ता है, किसी चीज के लिए कोई कर्जा नहीं लेना पड़ता है डीपीएसयू को, डिफेंस पीएसयू यूनिट जो होते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं अगर उनको लागत लगानी है तो उसके लिए बैंक से पैसा लेना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसके कारण वो कॉम्पिटेटिव नहीं हुआ करते थे। पर एक एडवांटेज प्राइवेट सेक्टर का ये होता है कि वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं, और उनके पास जो काम करने वाले लोगों की जो वर्कर्स हैं उसकी संख्या कम होती है, क्योंकि उनको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश उनकी रहती है। इसी के कारण जो एक कॉम्पिटेटिव एज प्राइवेट सेक्टर का है, उसी के कारण उनका जो इसमें भाग है स्पोर्ट्स में कहिए या रक्षा संपदा में कहिए, रक्षा प्रबंधन में कहिए, ये सब बढ़ता रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी अभी उनको काफी एनकरेजमेंट मिल रही है हर एक चीजों में, लाइसेंसिंग में, एक्सपोर्ट्स में, कुछ लोन्स देने में, डिफेंस कॉरिडोर्स में उनको जगह देने में, उनको नए नए चीजें वहां अगर कोई एस्टेब्लिश करनी है उसके लिए जो सुविधाएं देते हैं सरकार, वो सरकार भी अब चाहती है कि निजी क्षेत्र में जो कंपनियां लागत करेंगी या जो इसमें आएंगी उनको जितना एनकरेजमेंट दिया जाए उतना अच्छा है, कि जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतनी प्राइस कम होगी, और यही सरकार चाहती है।
आपने बताया अभी कि भारत में रक्षा उद्योग में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है और प्रोत्साहन दे रही है। नितिन जी, भारतीय सशस्त्र बलों ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत जो विकसित हैं उपकरण, हमारे जो हथियार हैं या बाकी के रक्षा उपकरण हैं, उनमें से कुछ का आप उल्लेख करना चाहेंगे कि उन्हें कौन कौन से उपकरणों को अपनाया है?
काफी नए उपकरण भी भारतीय कंपनी ने अपनाए हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका सहारा लिया है, नए मशीनरी जो बाहर से आती है वो भारतीय कंपनी ने उनका आयात किया है और उसको लगाया है। तो पहले जो होता था कि मैन पावर इंटेंसिव यहाँ पे स्ट्रेस था उसके ऊपर, कि बड़े बड़े डीपीएसयूज में 40,000 लोग काम करते थे एक प्रोडक्ट के ऊपर। एक तुलना के बदौलत मैं आपको बता रहा हूँ, या तुलना के तौर पर क्या होता है ये बता रहा हूँ, कि मॉडर्न टेक्निक, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण जिन कंपनियों ने इस टेक्निक को अपनाया है, AI हो, ML हो, मशीन लर्निंग हो, या फिर इंडस्ट्री 4.0 का जो टेक्निक है उसको अपनाया है, वही कंपनियां आगे जाके यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं, और वो कर रही हैं।
जी, रक्षा उत्पादन में अभी आने वाले वर्षों के लिए आप किस तरह की उम्मीद देखते हैं?
मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इसके मामले में कि रक्षा उत्पादन में भारत धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, और 5 वर्षों में मैं समझता हूँ भारत का एक्सपोर्ट जो है वो 35,000 करोड़ तक जाएगा डिफेंस प्रोडक्ट्स का, और जैसे उत्पादन भी बढ़ेगा उसी के कारण, इसलिए भारत एक पहले 10 या 15 देशों में भारत की गिनती होगी जो रक्षा संपादन करते हैं, रक्षा प्रबंधन भी करते हैं और रक्षा उत्पादनों को एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ बल्कि हमारे लिए ही नहीं दूसरे देशों के लिए भी। तो मेक फॉर द वर्ल्ड, ऐसा एक जो स्लोगन है उसका अनुकरण सभी कंपनियां कर रही है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जो कह रहे हैं कि सभी दुनिया के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन करिए, यहाँ पे उसका उत्पादन करिए, तभी जाके भारतीय रक्षा क्षेत्र है उसकी उन्नति होगी और उसका भविष्य में बहुत उज्ज्वल देखा।
नितिन गोखले जी, सुर्खियों में कार्यक्रम से जुड़ने और बहुमूल्य जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक नितिन गोखले और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।